नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों हम भजन संहिता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि आसाप के मन में यह प्रश्न था कि दुष्ट लोग फलते फूलते हैं परंतु धर्मी सताए जाते हैं, और अंततः आसाप जब मंदिर में गया तो उसने इसका उत्तर पाया कि अंततः दुष्ट भी नष्ट किए जाते हैं। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 73 उसके 23 पद से अध्ययन करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 73 उसके 23 पद को पढ़ें। लिखा है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। मित्रों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वह आपके हाथ को थाम लेगा। मेरे दो पुत्र हैं, उसमें से छोटा पुत्र जब कभी भी मैं कहीं जाता हूं वह मुझे थाम लेता है, अर्थात मेरे हाथों को थाम करके चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, वह मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, मैंने यह सीखा है, भजनकार ने भी यह सीखा। भजन संहिता 73 उसके 24 पद में लिखा हुआ है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मैं आज उसके साथ हूँ। मेरे जीवन का मुख्य बाइबल पद है फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 6 पद। लिखा है, मुझे इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मत कहो कि वह नहीं करेगा, क्योंकि वह तो निश्चय ही करेगा। इस भजन का यही संदेश है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मैं इससे अधिक उत्तम बात और क्या मांग सकता हूँ। अतः कुछ भी हो, चाहे मैं समझू या ना समझू, मैं केवल उस पर विश्वास रखूंगा। यदि आप बुरा ना माने तो मैं उसके साथ चलूंगा। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 73 समाप्त होता है और अब हम भजन 74 में देखते हैं, जिसका विषय है बैरी द्वारा मंदिर अशुद्ध करने पर मुक्ति की पुकार। यहाँ फिर मंदिर हमारे समक्ष है परंतु इस बार वह अशुद्ध किया गया है। यह आसाप का मुश्किल भजन है। आसाप मंदिर का लेवीय संगीतकार है। आइए हम भजन संहिता 74 के 1 पद को पढ़ें। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तब वह पुकारता है भजन संहिता 74 के 2 पद में, अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सियोन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर। वह हमें भौगोलिक स्थिति समझाता है। यह स्थान इसराइल और पलिस्तीन का क्षेत्र है। भजन संहिता 74 के 3 में हम पढ़ते हैं, अपने डग अनंत खंडहरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। ध्यान दें, बैरी ने मंदिर का पवित्र स्थान अशुद्ध किया था। अब भजन संहिता 74 के 4 में लिखा है, तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं, उन्होंने अपने ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है, वे उन मनुष्यों के समान थे। क्या हुआ था? यह एंटियोकस एपिफनास की सेना के आक्रमण का परिणाम था। सिकंदर महान के मरणोपरांत उसका राज्य 4 सेनापतियों में बट गया था। यह उसका एक सीरियाई सेनापति था। 175 ईस्वी पूर्व में उसने यरूशलेम को तहस नहस किया और मंदिर एवं उसके पात्रों पर सुअर का मांस फैलाकर उसे भ्रष्ट किया था। तथा वहां जुपिटर की मूर्ति स्थापित की थी। इसे दानियल नबी की पुस्तक 8 अध्याय में विनाश का अपराध कहा गया है। सन 70 में रोमी राजा तीतुस द्वारा मंदिर का नष्ट किया जाना भी भविष्यवाणी की पूर्ति था, तथापि आसाफ की भविष्यवाणी की पूर्ति अभी होना है जो मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद होगी। महाक्लेश में नष्ट करने वाली घृणित वस्तु भी दिखाई देगी जो पवित्र स्थान को अशुद्ध करेगी। आप यहां देखेंगे कि सताव और निराशा के उपरांत भी शेष भक्त कहेंगे, भजन संहिता 74 उसके 12 में, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। जी हाँ, अब इस प्रार्थना को सुने। भजन संहिता 74 उसके 18 में लिखा है, हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नाम धराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। दूसरे शब्दों में इसराइल परमेश्वर से कह रहा है, बैरी ने हम पर कब्जा कर लिया है और हमारे देश के अनेक जन मूर्ख रहे हैं, वे तेरी ओर नहीं आए, परंतु विश्वास योग्य कुछ लोग बचे हैं। भजन संहिता 74 के 19 में आगे हम पढ़ते हैं, अपनी पिंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में न कर, अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल। भजनकार पुकारता है, हे परमेश्वर, हमें संकटों से बचा। वह परमेश्वर के उद्धार के दिन की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे मित्रों, आपके कष्ट कैसे भी हो, वह आपको भी छुटकारा देगा। उसने अपने प्रजा को तो हमसे भी अधिक बड़ी बड़ी आपदाओं से उबारा है और भविष्य में वह और भी अधिक महान कार्य करेगा। भजन संहिता 74 के 22 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़, तेरी जो नाम धराए मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है उसे स्मरण कर। यह परमेश्वर के विजय कदम की पुकार है। यह एक प्रार्थना है जिसमें परमेश्वर की योग्यता का स्वीकारन है। यह भजन आसाफ की प्रार्थना है। यह एक मुश्किल भजन है जो हमें निर्देश देता है कि हम अपने संकट के समय परमेश्वर पर भरोसा रखें। यहाँ पर भजन 74 भी समाप्त होता है। अब हम भजन 75 से देखेंगे, मुक्ति का गीत। इसका शीर्षक है, प्रधान बजाने वाले के लिए अलत शेहत राग में आसाफ का भजन। भजन 74 आसाफ की प्रार्थना थी और भजन 75 मुक्ति का गीत है, भावी विजय का गीत है, अतः यह विश्वास की अभिव्यक्ति का भजन है। तो आइए हम भजन 75 उसके एक पद को पढ़ें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। परमेश्वर पृथ्वी पर अंततः अपना नाम सुरक्षित रखेगा। यह कैसे अद्भुत महिमामय सत्य है जो इस भजन में हमारे सामने रखा गया है। आइए हम भजन 75 के 2 पद को पढ़ें। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। ध्यान दीजिए, निश्चित समय आने पर मैं धार्मिकता में न्याय करूंगा। इसका अर्थ यह है कि प्रभु के आने का समय निश्चित है। जब वह इस पृथ्वी पर था तब वह एक दीन मनुष्य था। एक मनुष्य होने के कारण उसने कहा था, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 36 पद में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु उससे निश्चित समय पर ही आएगा। आप उससे पहले आने पर वाद्य नहीं कर सकते। मनुष्य वह समय नहीं जानता है। आज कुछ लोग उसके आने का समय निश्चित करते हैं, जैसे कि उनके पास स्वर्ग का पूछताछ फोन नंबर हो, परंतु मैं नहीं जानता, और सच तो यह है कि वे भी नहीं जानते। यह परमेश्वर का अपना निश्चित समय है। प्रभु यीशु का आगमन एक पूर्व निर्धारित समय पर ही होगा। आइए हम भजन संहिता 75 के 6 पद को पढ़ें। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। सहायता कहाँ से आएगी? न तो पूर्व से न पश्चिम से और न दक्षिण से। यहाँ आप ध्यान दें कि उत्तर का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उत्तर दिशा से बैरी आएगा। केवल परमेश्वर अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। भजन संहिता 75 इस घटना से पूर्व ही परमेश्वर के प्रति अमारोक्ति की प्रार्थना है। ये भजन कैसे अद्भुत हैं! मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए आशीष का कारण होंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 75 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं भजन 76 से। जिसका विषय है सिंहासन पर विराजमान मसीह की भविष्यवाणी। भजनों के अध्ययन में मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी अपनी बाइबल में अनुसरण कर रहे होंगे। भजनों में महत्वपूर्ण बात मात्र यह नहीं कि वे परमेश्वर का भजन है, परंतु यह कि उनका विन्यास कैसा है। जी हाँ, मैं यह नहीं कहता कि उनका विन्यास आत्मा प्रेरित है, परंतु उनके विन्यास पर ध्यान न देकर आप संदेश को पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे एक कहानी सुनाते हैं। भजनों की प्रत्येक श्रृंखला में एक संदेश विकसित किया गया है। आपको स्मरण होगा कि भजन 74 सहायता की पुकार है, हे परमेश्वर उठ। भजन 75 उत्तर में आक्रमणकारी बैरी से मुक्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। उत्तर से रूस आएगा और इसराइल को न तो पूर्व से, न पश्चिम से और न ही दक्षिण से सहायता मिलेगी। यह महाक्लेश के समय होगा। भजन संहिता 76 में प्रभु यीशु एक राजा याजक का राज्य है, सच्चा मलकीसेदेक, पृथ्वी के सब प्राणी उसके अधीन है। तो आइए हम भजन संहिता 76 उसके 1-2 पद को पढ़ें। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इसराइल में महान हुआ है, उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सियोन में है। मेरे प्रियो, जैसा कि मैं समय समय पर करता हूँ, डॉक्टर गबलिन के अनुवाद में इस प्रकार है, परमेश्वर यहूदा में जाना जाता है, इसराइल में उसका नाम महान है, शालोम में उसका मिलाप वाला मंडप है और उसका निवास स्थान सियोन में है। शालोम यरूशलेम का पुराना नाम है, जिसका अर्थ है शांति का वास। यहाँ 4 स्थानों का उल्लेख किया गया है जो इसराइल देश की अपेक्षा अन्य किसी देश में नहीं है: यहूदा, इसराइल, शालोम और सियोन। इस भजन में हमारे लिए आशीष इसकी व्यवहारिकता में है, न कि इसके अर्थानुवाद में। मैं यह मानता हूँ कि संपूर्ण धर्म शास्त्र हमारे लिए है। भजन 76 के 3 पद में लिखा है, वहां उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवारों को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। यशायाह ने अध्याय 2:4 में इसी दिन के विषय में कहा था, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर कभी तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। इस पद को संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए न कहें, क्योंकि यह पद वहां के लिए उपयुक्त नहीं है। यशाया उस शांति की बात को कर रहा है जो यीशु के आगमन पर संसार में व्याप्त हो जाएगी। जब तक मनुष्य के मन में या मन के पाप को मुक्ति या दंड न मिले, पृथ्वी पर शांति नहीं होगी। भजन संहिता 76 के 4 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिर्मय है, तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। डॉक्टर गबलिन इसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं, तू अहेर के पर्वतों पर महिमा के साथ दमक रहा है। अहेर के पर्वत का अर्थ है यरूशलेम। यह नगर 27 बार वैरियों द्वारा घेरा गया था। वह निश्चय ही अहेर का पर्वत था। वहां वैरी सदैव ही आते रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पृथ्वी पर विचरण करने वाले दुराचारी या दुराग्रही और घमंडियों का न्याय करेगा। वह यरूशलेम पर आक्रमण करने वालों को भी दंड देगा। भजन 76 के 5 पद में लिखा है, दृढ़ मन वाले लुट गए और भारी नींद में पड़े हैं, और शूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। यहाँ डॉक्टर गबलिन कहते हैं, कठोर मन वाले लुट गए, वे नींद में विशुद्ध हैं। नींद में विशुद्ध का अर्थ है कि वे ना तो सावधान हैं और सतर्क हैं। प्रेरित योहना पहला योहना की पत्री 5 अध्याय उसके 19 पद में लिखता है कि संपूर्ण संसार दुष्ट की बाहों में सो रहा है। दुष्ट कहता है, परमेश्वर के वचन का प्रचार मत करो, वे जाग जाएंगे। शैतान नहीं चाहता कि संसार जाग उठे। मेरे प्रियो, मैं शिष्यों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि दंड आने वाला है और मसीह के द्वारा उद्धार है। आप यह भी लिखा पाएंगे, शूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। वे उन विद्यानियों के समान है जो गिदोन की मशालें और तुरही का शब्द सुनकर नींद से जागे और आक्रमण के भय से चिल्लाकर तितर बितर हो भागे। आप इसे न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय उसके 21 पद में देख सकते हैं। भजन संहिता 76 उसके 6 पद में लिखा है, हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं। प्रभु यीशु के आगमन पर रथ और घोड़े एक ही झिड़की पर अचेत हो जाएंगे। उस समय प्रभु महिमा में चमकेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय के एक पद में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यह ख्रिस्त जयंती का गाना नहीं है, यह तब होगा जब मसीह यीशु दूसरी बार आएगा। वह एक महान दिन होगा जो भविष्य की घटना है। यशायाह 4 अध्याय के 5 पद में इस विषय में और भी कुछ लिखा है, तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। मेरे मित्रों, यह महिमा जो वहां होगी वह मसीह यीशु होगा। हमारे प्रभु के पलटा लेने का दिन आएगा। भजन संहिता 76 उसके 7-9 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, केवल तू ही भय योग्य है और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही, जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। इन पदों का अनुवाद इस प्रकार से भी हो सकता है, केवल तेरा ही भय माना जाए और तेरे क्रोध के सामने कौन आ सकता है। तूने स्वर्ग से न्याय की गर्जन की है और पृथ्वी के सब दीन जनों को बचाए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 6 अध्याय उसके 17 पद में यूहन्ना कहता है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। प्रभु यीशु के फिर आने पर सब कुछ उसके पांव तले होगा। भजन संहिता 76 के 10 पद में लिखा है, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी और जो जलजलाहट रह जाएगी उसको तू रोकेगा। परमेश्वर कहता है कि वह मनुष्य को बस इतना ही दूर जाने देता है, तथापि महाक्लेश के दिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु सब अवरोध हटाकर मनुष्य को अति करने देगा। आज मनुष्य पर रोक लगी हुई है, रोक लगाने वाला पवित्र आत्मा है। आज संसार में दुष्टता को रोकने वाला कौन है? परमेश्वर मनुष्य के क्रोध को अपनी स्तुति के लिए काम में लेगा। भजन संहिता 76 के 11 पद में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो, वह जो जय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। परमेश्वर उसके अभिषिक्त के विरुद्ध दुष्ट का प्रकोप रोकेगा। और भजन संहिता 110 उसका 3 पद कहता है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, अर्थात वे मन्नत मानकर पूरी करते हैं, अन्य जाति उसके अधीन समर्पण करेंगी। भजन संहिता 72 उसके 10-11 में लिखा है, तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। वह कैसा महान दिन होगा! यह एक महान भजन है। मेरे मित्रों, भजन संहिता 76 यहां पर समाप्त होता है और अब हम भजन 77 में देखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर की दया और भलाई के विषय उलझन। प्रधान बजाने वाले के लिए यदुतून की राग पर आसाप का भजन। आपको स्मरण होगा कि यदुतून प्रधान संगीतकार था। आसाप ने यह भजन उसके लिए लिखा कि वह उसे बजाए या गाए। यह भजन उस युग के मनुष्य की उलझन के कारण आत्मनिरीक्षण का समय प्रकट करता है। विश्वास की अपनी समस्या है, परंतु समाधान विश्वास ही से है। उत्तर फिर पवित्र स्थान में ही मिलेगा। इतिहास से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर भूलता नहीं है। तो आइए हम भजन संहिता 77 उसके 1-2 पद को पढ़ें। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। परमेश्वर की खोज का उत्तम समय कष्टों का समय होता है। मुझे एक व्यक्ति का पत्र मिला जिसने अपनी नौकरी खो देने का जिक्र किया था। वह नौकरी से निकाले जाने तक न तो हमारा कार्यक्रम सुनता था और न ही हमसे कोई संबंध रखता था। यही वह समय था जब उसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। जी हाँ, संकटों में प्रभु को पुकारना अच्छा है। वह मेरी ओर कान लगाएगा। मेरे मित्रों, संकट काल में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य ही सुनेगा। वह सच्चा है, आप उसके पास आ सकते हैं। मैं एक गाना सुनता हूँ, वह सच्चा है, वह सच्चा है, मैं जानता हूँ वह सच्चा है। परंतु उनका गाना और उनका जीवन देखकर मैं सोचता हूँ कि क्या यह उनकी सच्चाई है। मेरे मित्रों, यह सच है इसलिए नहीं कि मैं कहता हूँ या वचन में लिखा है, परंतु इसलिए कि आप अनुभव से इसका बोध पाएं। भजनकार तो हमसे पहले ही कह चुका है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। इसको आप परख करके अवश्य देखें। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, वह आत्मा के घाव का उल्लेख कर रहा है। यह एक और काम है जो उसने किया। भजन संहिता 77:6 में लिखा है, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। रात में गाना गाने योग्य होना एक अति उत्तम बात है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप रात में ऊंचे स्वर से गाकर पड़ोसियों की नींद में विघ्न डालें। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता हूँ। रात के समय आप अधिकतर चिंताओं में डूबे रहते हैं, समस्याएं विकट प्रतीत होती हैं। रात में कोई भी वस्तु अपने आकार से बड़ी प्रतीत होती है। यही रात का समय है जब आप रात में अपने गीत को स्मरण करते हैं, उसको समझने का यत्न करते हैं। अब वह कुछ उलझन भरे प्रश्न पूछता है। भजन संहिता 77:7-9 में, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैं स्वीकार करता हूं कि ये प्रश्न एक व्यवहारिक नास्तिक के हैं, परंतु मैंने भी ये प्रश्न पूछे हैं, शायद आपने भी पूछे हों। क्या आपको यह बोध है कि हम में से अनेक विश्वासी नास्तिकवाद का व्यवहार करते हैं? हम अर्थात मैं भी ऐसा व्यवहार करता हूं कि परमेश्वर नहीं है, वह हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, जैसे कि उसने हमें त्याग दिया हो। हम ऐसा जीवन जीते हैं कि मानो परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं और उसने अपने अनुग्रह प्रदर्शन को रोक दिया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर भला है, वह आप पर और मुझ पर अनुग्रह की वर्षा करना चाहता है। आपने चाहे कुछ भी किया हो, परमेश्वर आपके साथ भला ही व्यवहार करना चाहता है। भजन संहिता 77:13 में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। भजन संग्रह के इस भाग का आरंभ करते समय मैंने कहा था कि इसे लव्य वर्ग इसलिए कहते हैं कि यह परमेश्वर के परम पवित्र स्थान पर आधारित है। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। यह हमें स्मरण कराता रहेगा कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। इब्रानियों के पत्र 10:25 में हम इसे पाते हैं। हमें परमेश्वर के भक्तों के साथ सहभागिता करना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक कोने में अकेले बैठकर परमेश्वर के वचन का आनंद लें। हमें सब विश्वासियों के साथ वचन बांटना है, जिससे कि हम एक साथ उन्नति करें। मैं आडंबरी भक्तों में विश्वास नहीं करता। परमेश्वर आपको भाइयों और बहनों से आगे निकलने नहीं देगा। हम परमेश्वर के परिवार में हैं और हमें उनके साथ वचन और आशीष बांटना है। अतः परमेश्वर की गति परम पवित्र स्थान में है। यदि आपको अपने प्रश्न के उत्तर चाहिए तो आपको परमेश्वर के भक्तों के साथ संगति करना आवश्यक है। मुझे एक दिन किसी विश्वासी माता का पत्र मिला। उसमें लिखा था, परमेश्वर ने मुझे और मेरे पति को 5 अद्भुत बच्चे दिए हैं कि उन्हें उसके मार्गों में लेकर चलें। 17 महीने के शिशु को छोड़ अन्य सब बच्चों ने उद्धार पा लिया है। हमें बाइबल की शिक्षा देने वाली कलीसिया के सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है। वहां का पास्टर मनुष्य की नहीं परमेश्वर की अगुवाई में रहता है। वह परमेश्वर के उन मूल्यवान मनुष्यों में से है जिसे झिड़का जाता है और परमेश्वर के नाम के निमित्त उसका जीवन संकट में है। हम मनुष्यों के मन में परमेश्वर के काम और जीवन परिवर्तन देखकर आनंद से झलकते हैं। ऐसी कलीसिया के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम कलीसियाओं की बहुत आलोचना सुनते हैं, परंतु आज भी अनेक बाइबल आधारित कलीसियाएं हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाली और शिक्षा देने वाली कलीसिया में आराधना करते हैं तो आपको वही सहभागिता रखकर कलीसिया के साथ उन्नति करना है। आपको अपने अनेक प्रश्नों के उत्तर वहां मिलेंगे। शैतान बड़ी चतुराई से काम करता है। उसका आक्रमण मुंह के सामने नहीं होता है, वह परमेश्वर के वचन पर चलने वालों पर आक्रमण करता है। हमें इसका ध्यान रखना है। अब यहां समुद्र का परिदृश्य आता है। भजन संहिता 77 उसके 16 से 19 पद में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले, ववंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। यह परमेश्वर द्वारा उसकी प्रजा को लाल सागर पर पार कराने के संदर्भ में है। भजन संहिता 77 के 20 पद में लिखा है, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। मेरे मित्रों, यह हमारे व्यवहार हेतु है। परमेश्वर आज अपनी प्रजा को नास्तिकतावाद, अव्यवस्था और अनैतिकता की प्रलय से बचाने में सक्षम है। वह कैसा महान प्रेम करने वाला चरवाहा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक बातों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Just go.